वर्मा पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट इंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। After Mississauga, they are in Oakville as well. Village Taste, 905-232-3663. Village Taste.
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशा, 6472903773 6472903773।
आपको पर्सनल सपोर्ट वर्कर क्यों बनना चाहिए? दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए। केवल 5 महीनों में अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें और केयर के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करें। अधिक जानने के लिए ontario.ca/go-psw पर जाइए। इसके लिए अदायगी ओंटारियो सरकार द्वारा की गई है।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਸੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 905-450-2828, 905-450-2828।
कुछ हलाल पाकिस्तानी फूड खाना है, ऐसा जो दिल को लगे।
अरे मजेदार कड़ाही, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन रोल, बटर चिकन, किड्स मेन्यू, बहुत कुछ, टेक आउट, डाइनिंग या फिर कोई स्पेशल इवेंट, हर चीज पॉसिबल। और हाँ, कढ़ाई पॉइंट की सिग्नेचर डिशेस ट्राई करना मत भूलना।
मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया है।
तो फिर जाइए 285 सेंटेनियल पार्कवे, स्टोनी क्रीक, हैमिल्टन, 905-664-8866। याद रखना 905-664-8866।
कढ़ाई पॉइंट, स्टोनी क्रीक,
जहाँ हर मील एक सेलिब्रेशन है।
Of course, जहाँ हर मील एक सेलिब्रेशन है, कढ़ाई पॉइंट, इट इज इन स्टोनी क्रीक, यू गॉट टू गो टू द स्टोनी क्रीक। वेरी नाइस एम्बियंस, बैठने की जगह बड़ी कमाल की है, बहुत कमाल की है, बहुत ही कमाल की है। आप जाइएगा उनकी कढ़ाई ट्राई कीजिएगा। प्लीज प्रोग्राम साजोबाद का रेफरेंस जरूर दीजिएगा। आज की न्यूज इन स्पॉन्सर्स के तवस्सुत से हम आपके साथ मेरे साथ मेरे काबिल एहतराम भाई पायल ज्वेलर से जनाब असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मगर मैं अपडेट आपको करती चलूं, आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप के दस्ते रास्त उनके वेरी क्लोज, ही सपोर्ट्स हिम अलॉट। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन से पहले यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए ये इनके साथ इंटरव्यू किया था। और चार्ली कर्क इनका नाम है, इनका बेटा भी इनका फॉलोअर है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तकदीर का नक्शा ही बदल गया था। चार्ली कर्क जो है वो यूटा में, अगेन ये जरासीम कनाडा में आ चुका है। और ये जरासीम यही है कि दे डोंट वांट इमिग्रेंट्स। और चार्ली कर्क जो है अमेरिकन्स कम बैक के नाम से एक रैली कर रहे थे, और इस रैली में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ही ये की जा रही थी। जब वो सवाल जवाब कर रहे थे, हमने आपको इसकी बाकायदा फुटेज दिखाई है। अब से आप समझ सकते हैं 1 घंटा 5 मिनट पहले की ये खबर है। और वो बैठे हुए थे, सवालों के जवाब दे रहे थे। पहला सवाल जब उनसे किया गया, जो लोग टेलीविजन देख रहे हैं प्लीज आप देख सकते हैं, एंड इट एवरीथिंग हैपन्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जस्ट वॉच इट। अगर मैं स्लो डाउन इसको करूं तो वो अपने कैंप के बीच में बैठे हुए थे, उनके कैंप के स्टॉप इट, उनके कैंप का अनुमान था अमेरिकन कम बैक के दे डोंट वांट इमिग्रेंट्स। बड़ी तसल्ली से उनका एक हाथ उनकी लैप में था, दूसरे हाथ में उनका माइक था। हजारों की तादाद में लोगों ने टोपियां पहनी हुई थी, लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे। उनसे जो सवाल किया और वो ओपनली पब्लिकली इन सवालों के जवाब दे रहे थे। पहला सवाल उनसे मजहब के मुतल्लिक किया गया, दूसरा सवाल जो उनसे किया गया वो ट्रांसजेंडर के बारे में सवाल किया गया, और तीसरा सवाल कि अगर किसी को मारा जाए मजमे में, इज्तमाई कत्ल किया जाए तो क्या होगा। इस बात का यहां से हम दोबारा वीडियो दिखाते हैं। दिस इज द आंसर व्हाट ही वाज डिलीवरिंग दिस आंसर। और ये आंसर देते हुए आप देखिए उनके कंधे ऊपर की तरफ उचकते हैं, और लगता है जैसे खून बहता नहीं नजर आया, मगर लगता है जैसे गोली उनके सीने में लगी है। और डोनाल्ड ट्रंप और तमाम की तमाम इंतजामिया इस वक्त उनकी जिंदगी की दुआ। कॉन्जर्वेटिव एक्टिविस्ट हैं चार्ली कर्क। एक इवेंट यूटा यूनिवर्सिटी में ये उसका हुआ है। और अब बिफोर ही शॉट कर्क हर्ड अ वीडियो आंसरिंग अ क्वेश्चन अबाउट ट्रांसजेंडर मैस शूटर इन अमेरिका, ही हैड बीन इनवाइटेड टू स्पीक बाय द स्टूडेंट ग्रुप वेन शॉट फॉर। और अब सब उनकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। वी हैवन गॉट एनीथिंग न्यू येट। ही इज 31 ईयर्स ऑफ एज, वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, मीडिया पर्सनैलिटी हैं चार्ली कर्क। ही इज शॉट बट नो न्यूज येट। हमारे साथ आपको और ये प्रोग्राम में पास लोग कहते हैं जी 200, 300, 400 में ऐड, इट्स गोइंग ऑन द रेडियो, इट्स गोइंग ऑन द टेलीविजन। एंड ऑफ कोर्स मेरी रिक्वेस्ट है, आज मेरी अपनी एक मेरी बहन से बात हो रही थी, तो कोई बात हुई जी स्टेजिंग के हवाले से, जब हम स्टेजिंग करते हैं हाउ मच इट कॉस्ट, तो मेरी बहन मुझे कहती एडा महंगा। मैं क्या एडा महंगा, जो ग्रोसरी करने जाते हो जेडी $1 का गोभी का फूल सी, जो $3 का मिलता है, तो जेडे ट्रक चलाते फिर देने, जो पेट्रोल खर्च कर देने, ताड़ा ख्याल वो चीजा महंगी नहीं हुई। आज सोने का रेट सुन के मैं हैरान रह गई। हमारे साथ असलम भाई इस वक्त है। असलम भाई अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू?
वालेकुम सलाम, बढ़िया बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए?
यार ये 2 महीने के बीच में आउंस ने $2,000 का सफर कर लिया, यानी 2,000 नहीं $1,600 का सफर किया है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ 6 वीक्स, यानी $37 से ये जो गोल्ड की बार 3.25 तोले की बार है, ये तकरीबन 1.5 महीना,
31 ग्राम, 1 आउंस,
31 ग्राम्स जो है, यानी 1 आउंस जो सोने का है, इट स्टार्टेड इस जर्नी। ये तो बहुत सस्ता था, मगर आज से 1.5 महीना पहले 37 होता, एवरी डे प्राइस इज गोइंग अप। आज तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है बिकॉज कतर और दोहा में जो अटैक हुआ है, इसके बाद देखिए हम किस तरफ को जाके बैठते हैं, अब इन्फ्लेशन कहाँ जाती है, तो वेट फॉर दैट। मगर इस वक्त हम आपको लेकर के जा रहे हैं कहाँ पे, हम आपको लेकर जा रहे हैं हमारे अपने पायल ज्वेलर पे। आज के आउंस की कीमत भी बता दीजिएगा, और ये बताइएगा कि अब वक्त की नजाकत और जरूरत को महसूस करते हुए थोड़े वजन के बीच में ज्यादा फैलाव वाली ज्वेलरी आती जा रही है, तो आपके पास पहुंचने का क्या फायदा है?
भैया मेरे पास पहुंचने का ये फायदा है कि मैं आपको बार बार जब भी आता हूँ मैं आपको यही कहता हूँ कि जितने भी सुनने वाले हैं बहन भाई लिसनर हैं, उनको चाहिए गोल्ड थोड़ा थोड़ा ले लें, गोल्ड जरूरत है ना अगर, तो ले लें बस। ये ना देखे कि आज क्या प्राइस है, ये प्राइस ऊपर ही जाने या देखे, मैं तकरीबन एक साल से तो कह रहा हूँ ना कि ये प्राइस ऊपर जा रही है 3000 था, आप देख रहे हैं 51 हो गया, ठीक है। तो ये और उसके बाद जो आप कह रहे हैं ना, ये यकीन करें बिल्कुल लाइट वेट में सामान आना शुरू हो गया, लाइट वेट में, क्योंकि पॉकेट देख रही है, हर कस्टमर कहता है कि जो 10 ग्राम की चूड़ी थी वो मुझे ऐसा करें, मुझे वो 6 ग्राम में दे दें, ठीक है। जो बालियां जोड़े थे, जो सेट था 50 ग्राम का, वो कह रहा है कि मुझे तो वो तकरीबन 20 ग्राम 25 ग्राम में चाहिए। उसी तरह फ्लाव की चेनें आ रही हैं बदियान, उसी तरह चूड़ियां आ रही हैं फ्लाव में। यकीन करें कि ये सारा सारा काम मैंने, अभी शेमेंट मेरी आई है बहुत लाइट वेट में। आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई ये लाइट, उसी पता नहीं चलता, देखने से नहीं पता चलता कि इसका वेट कितना है, मगर उसका जो फ्लाव है वो ज्यादा है, वेट देखने में ज्यादा लगता है मगर है हल्की। तो ये मिलेगी आपको पायल ज्वेलर पे, और डिजाइनिंग भी बिल्कुल नई डिजाइन है, सिंगापुर की टर्किश आई है डिजाइनिंग, काफी काफी डिजाइनिंग आई है मेरे पास ज्वेलरी में। तो तशरीफ लेके आए, इंशाल्लाह आपको प्राइस भी अच्छी मिलेगी, इंशाल्लाह प्राइस भी अच्छी मिलेगी और गोल्ड की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, 22 कैरेट में सारा गोल्ड लगेगा।
नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट के इंटरसेक्शन के ऊपर, नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट के इंटरसेक्शन पे पायल ज्वेलर्स असलम भाई यहाँ पे मौजूद होते हैं। असलम भाई, बनवाई और काट बहुत मारती है, तो मुझे ये बताइए,
देखें भाई यहाँ देखें मेरी बात सुने, एक चीज है, हम फैक्ट्री में जाते हैं कुछ नहीं दे के आते, अपना टाइम दे के आते हैं, काम करते हैं, पैसे लेके आते हैं, ठीक है। ये आपको गोल्ड मिल रहा है तो वो जिसने गोल्ड भाजिया बनाया है, हम मैं कुछ ना कुछ थोड़ा तो करेंगे ना। ये एक तरीकाकार बना हुआ है सबके लिए, एक तरीकाकार बना हुआ है कि जो आप काम करेंगे आपको
हर एक के बिल्स हैं इसमें। आई टोटली एग्री मगर बाज़ोकात जाहिर है, अगर आप चाहें तो ऑमसीज इकट्ठे कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप जेवरात ले सकते हैं।
बिल्कुल
आपके पास बहुत खूबसूरत जुड़ाऊ जेवरात है। असलम भाई, अगर किसी ने कस्टम डिजाइन करना हो तो यू हेल्प फॉर दैट एज वेल?
भाई यार यकीन करें मेरे पास अब भी कस्टम, मैंने पिछले वीक में बना के दिए, वो पहले सेट तकरीबन 160 ग्राम का था, अब भी मेरे पास वो सेट पड़ा हुआ है, तो लाइट वेट में वही सेम यकीन करें बना के दिए, वो तकरीबन बनाया 110 में, 110 ग्राम में, ठीक है। इसी तरह अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी आपको मिलेगी, यकीन करें, पता नहीं बिल्कुल सेम, मुझे फोटो चाहिए तो आपको सेम चीज मिलेगी, आपको बना के भी, अगर दुबई का बना हुआ दुबई से बनेगा, अगर वो सिंगापुर का बना हुआ तो सिंगापुर से बनेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं कहता हूँ कि जिसका बना हुआ जो चीज बनी है वहां से ही बना के दो, ये नहीं जाता कि आपका सेट आपने मुझे बताया सिंगापुर का बना हुआ है तो मैं आपको लोकल बनवा दूं, नहीं ऐसा काम मैं नहीं करता, मैं तो जो चीज बनी हो, जिस चीज की बनी है वो ही बनवा के दूंगा, मॉडल नंबर सारा कुछ वही होगा।
बहुत शुक्रिया, अपना एड्रेस दीजिए, डायरेक्शन दीजिएगा, फोन नंबर दीजिएगा।
मेरा फोन नंबर है 9057907879, 905-790-7879। एड्रेस है मेरा 27B नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट नंबर 42, ब्रैम्पटन, एयरपोर्ट एंड नॉर्थ पार्क।
बहुत शुक्रिया, और ये हमने बात की आप करवाई आपसे जनाब असलम भाई से। असलम भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, टोरंटो की हवाओं में पिछले 25-26 साल से लोग इनकी आवाज को सुनते भी हैं, आपने इनसे जेवरात लिए भी हैं, जेनरेशंस की शादियों पे जेवरात यहीं से ही गए हैं, आपका बेटा, आपके आगे ग्रैंड चिल्ड्रन, हो सकता है आपके लिए भी जेवरात बनाए हो, तो आपने जाना है पायल ज्वेलर्स के ऊपर, एयरपोर्ट और नॉर्थ पार्क इंटरसेक्शन में। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया,
थैंक यू,
अल्लाह हाफिज। असलम भाई से मैंने बात कराई। आई साहब, मैं आपको अमेरिका की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, इट्स वेरी स्ट्रेंज सूरत हाल, चार्ली कर्क का यकीनन असर पड़ेगा जरूर, आई डोंट नो, हमें जरा स्टॉक्स के ऊपर देखो, इसका स्टॉक्स पे क्या असर आया है चालीगढ़ की इस मास शूटिंग के नतीजे में, स्टॉक्स कहां पे गए हैं, मैं यकीनन वो भी आपके साथ शेयर करती हूं। चालीगढ़ जो है, अब ये सुनने वाली बात है, आप बताइए कि अमेरिका में दो तीन चीजों के ऊपर सख्ती हुई, बहुत सारी चीजों पे अगर तो सख्ती हुई राइटिस्ट के हाथ से, तो वो कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स की कोई मुकाम नहीं है, इसके अलावा एलजीबीटी का कोई मुकाम नहीं है, दे टोटली एबॉलिश दिस थिंग। कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट जो चार्ली कर्क हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब हैं, मीडिया पर्सनैलिटी एंड वेरी स्ट्रांग, ये एक इवेंट जो यूटा यूनिवर्सिटी में हो रहा था वहां इनको गोली लगी है। सीएनएन ने उनकी, बल्कि वो तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जब मेरे पास ये वीडियो आई थी उस वक्त हार्डली दो मिनट हुए थे ये वाकया होने के, तो चार्ली कर्क कंजर्वेटिव पॉडकास्ट हैं, होस्ट हैं, यूटा की यूनिवर्सिटी में इनको हुआ है। अब मैं अगर उसकी तफसील को, सीएनएन ने उनकी वो बैठे हुए साइड पोस्ट के ऊपर मेरे पास वीडियो थी, मैंने वो शेयर की है, मगर उनकी साइड पोस्ट की पिक्चर आ गई है। कहते हैं जस्ट सेकेंड्स, बहुत से लोग, क्योंकि उनके पॉडकास्ट पे बहुत सी उनकी फॉलोअरशिप है, लुक एट दिस इज हाउ ही वॉज सिटिंग, ऊंची कुर्सी के ऊपर वो बैठे हुए हैं और उनके सामने टेबल है, बिल्कुल वो प्रोटेक्टेड नहीं थे फ्रंट से और वो सवालों के जवाब दे रहे थे। ये ट्रांसजेंडर्स के बारे में सवाल था और लोग जो उनका बेशुमार हजारों की तादाद में लोग यूटा यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, अभी एक अरेस्ट हो गया है, उन्होंने कहा एक अरेस्ट हैज बीन मेड यूटा में। अब वो कहते हैं कि ये इनका पॉडकास्ट भी इस वक्त लाइव चल रहा था, क्वेश्चन उनसे पूछा गया ट्रांसजेंडर्स मैस शूटर्स इन अमेरिका, हियर्स लुक एट द एक्सचेंज, ऑडियंस मेंबर डू यू नो हाउ मेनी ट्रांसजेंडर अमेरिकन हैव बीन मैस शूटर्स ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, के तुम्हें पता है कि कितने ट्रांसजेंडर्स जो हैं उन्होंने मैस शूटिंग की है, ज्यादा सारी पब्लिक पे शूटिंग की है अमेरिका में। कर्क ने इसका जवाब दिया टू मैनी, द सेम ऑडियंस मेंबर वेंट ऑन सेइंग द नंबर इज 5, के 5 लोग हैं, जिस बंदे ने ये सवाल पूछा था कि तुम्हें पता है कितने मैस शूटर्स ट्रांसजेंडर्स हैं अमेरिका में, तो कर्क ने कहा टू मैनी, तो इस आदमी ने जिसने सवाल पूछा था उसने जवाब दिया 5, एंड प्रोसीड टू आस्क इफ कर्क नोज हाउ मेनी मैस शूटर्स देयर वर बीन अमेरिका ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, कि पिछले 10 साल में कितने शूटर्स हैं। कर्क काउंटिंग और नॉट काउंटिंग गैंग वायलेंस, सेकेंड लेटर द साउंड ऑफ पॉप इज हर्ड एंड द क्राउड स्क्रीम्स एज कर्क गेट्स शॉट, वो अपने आप को मुड़ता है और यहां पे इसकी क्लियर पिक्चर भी आ जाएगी। यूटा की जो यूनिवर्सिटी है, यूटा यूनिवर्सिटी, वो उसको बंद कर दिया गया है और तमाम क्लासेस को कैंसिल कर दिया गया आने वाले अगले नोटिस तक। और जो नोटेबल फिगर्स हैं, जो एरिक ट्रंप भी यहां पर मौजूद थे, अब देखिए ये कितनी सूरत हाल है, नोटेबल फिगर्स आर रिएक्टिंग टू द चार्ली कर्क शूटिंग ऑन यूटा। आपको बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप को चार्ली कर्क के पास लेके जाने वाले उनके बेटे एरिक ट्रंप थे। एरिक ट्रंप, चार्ली इज अ ग्रेट फ्रेंड एंड एन अमेजिंग पर्सन, लारा ल्यूक कैरोलाइना एंड आई विल बी प्रेइंग फॉर हिम, हिज वाइफ एरिका एंड देयर 2 चिल्ड्रन। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि चार्ली कर्क इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग आई नो, एवरी वन प्लीज लिफ्ट हिम एंड हिज फैमिली प्रेयर्स। जो क्रिस्टी नोम है, उन्होंने कहा द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी, उन्होंने कहा है बायरन एंड आई आर लिफ्टिंग द चार्ली, एरिका एंड देयर फैमिली इन आर प्रेयर्स राइट नाउ। पीट हैगेट्स जो है, उन्होंने लिखा है एन इनक्रेडिबल क्रिश्चियन अमेरिकन एंड अ ह्यूमन बीइंग, मे द हीलिंग हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट बी अपॉन हिम। और माइक जॉनसन जो हाउस स्पीकर हैं, उन्होंने दुआओं के बारे में कहा है, एंड दिस इज समथिंग, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड एनी फर्दर। चंद एक स्पॉन्सर्स, वेलकम बैक। मैं आपको एक गीत की तरफ लेकर के जाना चाहती हूँ, चलिए साहब इस गीत तो सुनते हैं। गीत बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों की, आई लव दिस सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। और मैंने कहा पाकिस्तान के बाज गीतों के बारे में हमें आपको मालूम भी नहीं है, जस्ट इंजॉय द मौसीकी, इंजॉय द जो आपको मजा मिलता है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं। गाने का नाम भी है पहाड़ों की कसम, और आर्टिस्ट से शान खान है, اور اس کا میوزک جو ہے ایوان شفیق نے ترتیب دیا ہے، کمال محمود کے جو بول ہیں ڈائریکٹر مدثر صاحب کے ہیں، اور آئی ہوپ سو یو ول لو دس سانگ، انجوائے پہاڑوں کی قسم، اٹس اے بیوٹیفل سانگ۔
تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ اچھی لگتی ہے،
میرے بابا نے میری بات پر
کہ ملاقات ہو آواز سے، کب سے تنہائی لگی بیٹھی ہے دروازے،
ہم تمہاری راہ دیکھیں۔
जी सब तुम चले आओ पहाड़ों की कसम चंद एक्सपांसेस वेलकम बैक टू स्टेट
अफगान ग्रिल। जी हाँ ऑथेंटिक अफगान रेसिपीज मिसेस सागर के दिल में अफगान ग्रिल हाईवे 401 एंड हाईवे 10 के करीब जूसी बीफ चिकन कबाब सिजलिंग अफगान कढ़ाई हरनवाला जायकेदार ताज़ा ताज़ा नान काबली पुलाव ताज़ा सलाद असली जायका असली मजा एक बार खाएं इंशाल्लाह बार बार जाएंगे। कोई भी फैमिली इवेंट या गैदरिंग के लिए एक बार जरूर ट्राई कीजिए अफगान ग्रिल 120 ट्रेडर्स फुल रिवॉर्ड इन मिसेस सागर अफगान ग्रिल www.afghangrillhouseinc.com कॉल कीजिए 9058428844 9058428844
एक और खुशखबरी नॉर्थ अमेरिकन चाइनीज से कोरियन में से इस्तेमाल शुदा टायर विद फुल वारंटी
अकाल ट्रक एंड लूप 1776 मेयरसाइड ड्राइव 905-565-1100
Painters of GTA for your home paint or office paint, interior or exterior, popcorn ceiling ko remove karna, water damage, if there are yellow spots in ceiling, call Painters of GTA. Water damage mein agar yellow spots aapki ceiling pe unko remove karke, bedaag karenge. Texture style painting, which is the latest Italian style painting, ya wallpaper lagwana chahte hain, to call kijiye texture style painting ke liye Painters of GTA 647-271-1974. Mohammed Salim 647-271-1974
अयो इतना खूबसूरत घर
आपने भी बेसमेंट के रेनोवेशन करवाना है तो रब्ता करो एक चीता मेरे हाथ में लगा क्या कमाल की रेनोवेशन और दाम बहुत मुनासिब
कौन सी रेनोवेशन टैरिफ लग रहे हैं भूल जाए सब कुछ
अरे बाबा चिंता ना करो नैशिक रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन लीगल बेसमेंट साइड एंट्रेंस वॉशरूम किचन पेंट फ्लोरिंग तमाम काम सिटी परमिट के साथ करवा के देते हैं बहुत मुनासिब दाम है और भाई आजमाइश शर्त है गारंटीड प्रोफेशनल सर्विस कॉल 416-838-7837
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा
कौन से काम
वही बेटी की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ
बस इतनी छोटी सी बात पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी
मुझे उनका एड्रेस बताओ मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ
जी जी बिल्कुल पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन पायल उसके असलम भाई को कॉल करें ना एट 905-790-7879 दैट इज 905-790-7879
ग्रिल इन द हार्ट मिसेस सागर में ऑर्डर वाया फोन इमरान भाई को कॉल करें
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 905-405-8383 ग्रिल इन द हार्ट
डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान अब मिसिसागा में दूसरी लोकेशन के साथ रूट कैनाल व्हाइट टीथनिंग इम्प्लांट डेंटिस्ट्री डेंटल क्राउन्स विजडम टूथ रिमूवल क्वालिटी डेंटल केयर पूरी फैमिली के लिए एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स वॉक इन एंड इमरजेंसी एक्सेप्टिंग कनाडा डेंटल केयर प्लान डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान 3465 प्लैटिनियम ड्राइव यूनिट 76 मिसिसागा फोन 905-820-0900 905-820-0900
कुछ हलाल पाकिस्तानी फूड खाना है ऐसा जो दिल को लगे
अरे मजेदार कड़ाही बिरयानी सीख कबाब चिकन रोल बटर चिकन किड्स मेन्यू बहुत कुछ टेक आउट डाइनिंग या फिर कोई स्पेशल इवेंट हर चीज पॉसिबल और हाँ कढ़ाई पॉइंट की सिग्नेचर डिशेस ट्राई करना मत भूलना
मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया है
तो फिर जाइए 285 सेंटेनियल पार्कवे स्टोनी क्रीक हैमिल्टन 905-664-8866 याद रखना 905-664-8866
कढ़ाई पॉइंट स्टोनी क्रीक
जहाँ हर मील एक सेलिब्रेशन है जी साहब प्रोग्राम में न्यूज के साथ हम आपको लेकर के चल रहे हैं आज के प्रोग्राम में तीन इम्पोर्टेंट न्यूज हैं अभी जो अमेरिका में अनफोल्ड जो ही सूरत हाल हो रही है अब से तकरीबन एक घंटा और
35 منٹ پہلے ایگزیکٹلی 1 آور 35 منٹس پہلے چارلی کرک جو کہ رائٹسٹ ہیں, دائیں بازو سے ہیں, انتہا پسند ہیں, پوڈ کاسٹر ہیں, میڈیا پرسنالٹی ہیں, ہی از 31 ایئرز آف ایج, یوتھ میں بہت, اور ظاہر ہے اس وقت جو امریکہ کا ایک ریڈ نیک کا صورتحال ہے, دے آر اگینسٹ امیگرینٹس اینڈ دے وانٹ اینڈ دے تھنک دیٹ امریکہ بلانگس ٹو امیرکن, and I don't know where do they put those aboriginals, I'm not sure about it, magar wo rojan badhta chala ja raha hai writers ka. آج ایک بج کے تقریباً اب سے 1 گھنٹہ 35 منٹ پہلے ان کو گولی مار دی گئی تھی, جس میں ابھی تک ان کی صورتحال کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. یوٹا یونیورسٹی میں یہ ٹرپ میں تھے, آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب اپنی الیکشن کمپین میں بھی آئے تھے تو اس کمپین میں بھی ان کے بیٹے جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے چارلی کرک کو اپنا انٹرویو دیا تھا. آج وہ یوٹا یونیورسٹی میں موجود تھے, ان سے سوال کیے گئے, سوال ایک ٹرانسجینڈر کی طرف سے ہی تھے, اور امریکہ میں ان چیزوں کی پابندیاں بھی ہیں. پہلا کوشچن ریلیجن کے بارے میں تھا, دوسرا کہ ٹرانسجینڈرز, کتنے ٹرانسجینڈرز کو مارا گیا, ماس شوٹنگ کتنے نے ماس شوٹنگ کی, انہوں نے جواب دیا ٹو مینی, انہوں نے جواب دیا 5, سوال کرنے والے نے جواب دیا. پھر اس سے سوال کیا کہ ان لاسٹ 10 ایئرز ہاؤ مینی ماس شوٹرز, ٹرانسجینڈرز ماس شوٹرز, بس اس کا وہ جواب دے رہے تھے. آل آف سڈن ہم نے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ بریکنگ ویڈیو شیئر بھی کی تھی, تو انہوں نے اپنے سینے اور گردن کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ جھکتے ہیں کہ وہ سٹنگ آن اے ہائی چیئر اور رائٹ ان فرنٹ آف تھاؤزنڈز کے مجمع کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. آل آف سڈن شور شور ہوا. اس وقت ڈپارٹمنٹ آف سیکورٹیز وہاں پر موجود ہے, ایف آئی اے وہاں پر موجود, سی آئی اے وہاں پر موجود ہے, اور تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس وہاں پہ موجود ہیں. یوٹا کی یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا ہے, یہ انتہا پسند تھے. دوسرا واقعہ جو کل کا ہے وہ پولینڈ نے جو نیٹو کی شک نمبر 4 یا 4th آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے وہ ڈرونز جنہوں نے پولینڈ کی فضاؤں میں ٹریول کیا, ان میں سے 4 ڈرونز کو گرایا. کہا جاتا ہے یہ بیلاروس کی طرف سے ڈرونز آئے تھے, اور وہ کہتے ہیں وی ہیو ٹیکن دا فرسٹ اسٹیپ ویری سکسیسفلی. سو دس مین دس از دا فرسٹ ٹائم کہ رشیا جو ہے اس کے کوئی ڈرونز یا اس کے علاقے کے کوئی ڈرونز فائرڈ ڈاؤن بائی دا گاڈ بلیس یو دس نیٹو الائز کی طرف سے فائر. تیسرا امپورٹنٹ واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اٹیک کیا ہے اسرائیل نے قطر کے اوپر اٹیک کیا ہے. اب تک قطر امریکہ کا سب سے بڑا الائی یا دوست سمجھا جاتا ہے, بہت بڑی اسٹرانگ بیسز ہے امریکہ کی, انویسٹمنٹ بہت ساری ہے. آج قطر کے وزیر اعظم انہوں نے انٹرویو دیا ہے, سی این این کو انٹرویو دیا ہے, ہی واز اپسیٹ, ناٹ لٹل اپسیٹ, ہی واز ویری اپسیٹ. اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد عبد الرحمان انہوں نے شدید الفاظ میں نتن یاہو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. یہ سی این این کی اینکر اینڈرسن کوپر کو یہ انٹرویو دے رہے تھے. انہوں نے کہا یہ ریاستی دہشت گردی اس کو, اور انہوں نے کہا میں اپنے غصے میں اس سے برے لفظ اور کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا, ریاستی دہشت گردی ہے, اور ہم مڈل ایسٹرن کنٹریز نے اپنے آپ کو دھوکے میں پایا. حماس کے چیف مذاکرات کار کی حیثیت سے آف کورس وزیر اعظم جو قطر کے ہیں انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے. انہوں نے حماس کے جو لیڈر ہیں خلیل الحیا, ان کی حالت کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا نو, یعنی اس کے بارے میں بتانے سے انہوں نے انکار ہے. انہوں نے کہا بھی کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا, ہی واز لٹل بلکہ ویری مچ اوفینڈیڈ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج اسرائیل نے اگر قطر میں اٹیک کیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے گا اسرائیل جن جنگی قیدیوں کی رہائی کا ذکر کر رہا ہے اب بھول جائے اس کو, اور ان کی امید بالکل ختم ہو گئی ہے. نتن یاہو کے اوپر سی این این پہ جناب قطر کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نتن یاہو کو کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے, بین الاقوامی نظام نے بھی ان کو مطلوب قرار دیا ہے, تو ناؤ بنجمن نتن یاہو کو کٹہرے میں آنا چاہیے گا. انہوں نے کہا کہ ہم امن کی کوششیں کر رہے تھے, بنجمن نتن یاہو کی دوہا میں اٹیک, اپنے ایک امریکہ کے الائی پہ جو اٹیک کیا ہے اس کے بعد اس نے تمام کوششوں کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی ہے. علاقائی رد عمل کی بات ہے تو اگلے آتے ٹائم میں آپ ذرا پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھتے دیکھیے گا. آج سونے کی قیمت 5100, ایک آنس کی قیمت 5150 روپیز ڈالرز ہو گئی. आइए आपको लेके चलती हूँ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज की तरफ। डॉक्टर सफदर मेरे साथ हैं, अ वंडरफुल मैन, इट्स अ वेरी नाइस स्कूल। अगर आप अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में भेजना चाहते हैं, गिव अ चांस टू दिस इस्लामिक स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज। बहुत बड़ी फैसिलिटी है एंड दिस इज नॉट कि ओवरनाइट ये बनाई, एक अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं। अब फ्रेजर्स एकेडमी की अगर हम बात करें, ये वो थर्ड पार्टी है जो कि कनाडा के तमाम इंस्टीट्यूशंस की डिपेंडिंग अपॉन, अभी हम डॉक्टर साहब से बल्कि पूछ लेते हैं किन ग्राउंड्स के ऊपर ये रैंकिंग करती है। और दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्कूल, दी फाइनेस्ट स्कूल्स, कैथलिक स्कूल्स, ये हमारा इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज की बात कर लें। देयर आर सम अदर, डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर सफदर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह सिस्टर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ, और आप कैसी हैं?
अल्लाह का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे पता है कि आप लोगों का टारगेट भी अचीव हुआ, लोग अपने बल्कि ज्यादा बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, बट स्टिल यू नो व्हाट दे वांट, आई जस्ट वांट यू टू लुक एट द स्टैंडर्ड्स व्हाट दे मीट, दैट इज इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज। आपकी ऑनगोइंग सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया सर फॉर साज़ो आवाज़, थैंक यू वेरी मच।
ये हमारे लिए बड़ा एजाज है कि आप हमारे स्कूल का जिक्र करते हैं अपने रेडियो पे, टीवी पे, और सच्ची बात यही है कि हम एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और हम चाहते हैं कि जितना भी दीनी और दूसरा जो इल्म है, दुनियावी इल्म जो है, वो अपने बच्चों को पास ऑन करें। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने जिक्र किया फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा का, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा इकट्ठा करती है सारे कैनेडियन स्कूल्स का। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल जो है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज जो है वो कम्पीटिंग विद 3000 अदर स्कूल्स जो है दो दफा ये फर्स्ट रैंक जो है इसने हासिल किया है, लुकिंग एट 9 डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो वो डाटा जो है ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट इकट्ठा करता है, और इनके स्टेटिस्टिशियंस जो हैं यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, तो उसमें उन्होंने डिटरमिन किया कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज जो है वो रैंक नंबर 1 उसने अचीव किया है, तो बेस्ड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाक परवरदिगार ने हमें ये एजाज बख्शा है, और इसमें मेरे असातिज़ा की बड़ी मेहनत है, बच्चों की बड़ी मेहनत है, पेरेंट्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, और पूरी कम्युनिटी, और हमारे खास तौर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बहुत दिलचस्पी लेते हैं स्कूल में। आज से 32 साल पहले ये स्कूल जो है वो वजूद में आया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके अब तक जो है वो लम्हा लम्हा जो है वो हम आगे बढ़े हैं, और कम्युनिटी का ट्रस्ट हमने गेन किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास जगह नहीं होती, लेकिन ये कि बच्चे फैमिलीज अपने बच्चों को लेके आती हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिजिकल फैसिलिटीज को भी इंक्रीज कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम दाखला दे सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्कूल को प्रमोट करते हैं और हक बात करते हैं। आपने हमेशा, मैं आपसे सच्ची बात है, आप जितने एक्सपर्ट्स लेके आते हैं, और माशाल्लाह पूरे ओंटारियो कनाडा में और बियॉन्ड कनाडा आपकी एक आवाज है, बड़ी ताकतवर आवाज है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक आपको इसके जजा दे कि आपने हमेशा जो है वो अच्छे इदारों को इंट्रोड्यूस करवाया है साज़ो आवाज के जरिए।
डॉक्टर साहब आपका बे इंतहा शुक्रिया, और यकीनन हमारी कोशिश ये है कि आज के दौर में सिर्फ खेल कूद ही नहीं है, अपने इर्द गिर्द से वाकिफ रहना बहुत जरूरी है। न्यूज बेस्ड इन्फॉर्मेशन जिसमें हम भरपूर कोशिश और तावन के साथ, अपनी टीम के तावन के साथ, देर आर डिफरेंट पीपल वर्किंग ऑन, हम तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, जिसमें आपका बहुत शुक्रिया। एंड आई टेक द प्राइड अनाउंसिंग अबाउट इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज, एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज, अगर आपके बच्चे तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं जमात, पूछ के तो देखिए, यू मस्ट विजिट दिस इंस्टीट्यूशन, लुक एट द टीचर्स, लुक एट देयर क्या एक्रेडिशन के बारे में देखिए, उनकी तालीम का मैार देखिए, उन टीचर्स के बारे में मालूम कीजिएगा, पढ़ाने का तरीका देखिएगा। और अगर हम फ्रेजर्स इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, दिस इज अ थर्ड पार्टी, अपने मुंह तो हर कोई कह देता है मैं मियां मिट्टू हूं, ठीक है, तो मगर दिस इज समथिंग 3000 स्कूल्स का डेटा इकट्ठा करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, एंड इट स्टूड नंबर 1 आउट ऑफ 3000, دیٹ از انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج. ڈاکٹر صاحب کن کن گریڈس میں ایڈمیشن کے چانسز ہیں؟ بٹ سپوز اف سم بڈی مووز ان بٹوین, آئی مین ان کا بچہ ہو سکتا ہے چوتھی جماعت میں, ہو سکتا ہے ساتویں جماعت میں ہو, بٹ دے موو فرام ون پلیس ٹو اندر, وڈ دے بی ایبل ٹو گیٹ ان ٹو اور ٹیسٹ بچے کی, آپ جو بھی ٹیسٹ لینا چاہیں تو کین دے گیٹ ایڈمیشن ان دا اسکول؟
جی جی, دیکھیں ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ جتنی ہمارے پاس اسپیس ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکیں جتنی بھی فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں. لیکن آپ ظاہر ہے کہ کرائیٹیریا بھی ہوتا ہے, اس کرائیٹیریا کو ہم جو ہے وہ انشور کرتے ہیں کہ جو بچے آتے ہیں ہمارے پاس وہ اس قابل ہو سکے, وہ مرج ہو سکیں, وہ جو دا کراؤڈ دیٹ وی ہیو. اور اس میں بہرحال ایڈمیشن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اور ایڈمیشن ٹیسٹ سوٹیبلٹی جو ہے بچوں کی وہ دیکھی جاتی ہے. ایلیمنٹری اسکول ہے, جونیئر کنڈر گارڈن سے لے کے گریڈ ایٹ تک ہمارے پاس گریڈز ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیپیسٹی کے لحاظ سے کہ ہمارے پاس اتنی جگہ ہو تو پھر ہم بچوں کو ٹیسٹ بیسڈ آن دیئر ٹیسٹ, بیسیکلی یہ جو ٹیسٹ ہم لیتے ہیں وہ اس طرح سے ایگزامینیشن نہیں ہے, وی کال اٹ نیڈز اسیسمنٹ ٹیسٹ. نیڈز اسیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ بچے میں جو جو کوالٹیز ہیں, جتنی اچیومنٹ بچے نے کی ہوئی ہے, اور ہم گیپس دیکھتے ہیں کہاں کہاں پرفارمنس گیپ ہے, اور اس پرفارمنس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم ٹیچرز کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ بچہ جب کلاس میں انٹر ہو تو ہمیں بچوں کی جو ضرورت پتہ ہو کہ اکیڈمک نیڈز کیا ہیں اس کی, اکارڈنگلی پھر ہم اپنا پلان جو ہے لیسن پلان جو ہے وہ پرپیئر کرتے ہیں, اور بچہ جو ہے وہ ہر فیلڈ میں, سائنس ہو, میتھ ہو, اسلامک اسٹڈیز ہو, قرآن ہو, سوشل اسٹڈیز ہو, ہر چیز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو ایکسل کرنے کے لیے مواقع جو ہے نا وہ فراہم کریں. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے جی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اپنا ایڈریس دے دیجئے گا اور آپ سے بات چیت کے لیے کون سا ٹائم ہے؟
جی میں تو صبح 8 بجے اسکول میں ہوتا ہوں, 4 بجے وہاں سے نکلتا ہوں, تو اینی ٹائم مائی ڈورز آر اوپن فار اینی ون ٹو کم ان اینڈ سی. وی آر ولنگ ٹو گیو دم دا ٹورز آف دی اسکول, کیونکہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہیں. میں نے کافی ساری یونیورسٹیز میں پڑھایا ہوا ہے, تو وہ یونیورسٹیز میں ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں جو ہمارے اسکول میں ہیں, یعنی انٹریکٹیو اسمارٹ بورڈز ہیں, اور جم جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ, اگین جم دا بگیسٹ جم ان انٹیریو ہے, اور 2 ایکڑ کا ہمارے پاس ساکر فیلڈ کا ہے, اور آل فیسلٹیز دیٹ اینی ون کین امیجن تو وہ ہم پرووائڈ الحمد للہ کرتے ہیں. تو اس میں بچوں کو ہر طریقے سے گرو کرنے کا اور ڈیولپ کرنے کا اور آگے بڑھنے کا پورا پورا جو ہے نا وہ موقع دیا جاتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ تمام سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے ایڈمیشن لینا چاہیں اور آپ ایک دفعہ انسٹیٹیوٹ کو دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب ایسے آپ کو یہاں پہ بورڈنگ ہاؤس بھی بنانا چاہیے, دیر مسٹ بی پیرنٹس فرام فار آف.
جی جی, فی الحال ہم ایک چیز یہ سوچ رہے ہیں کہ ہائی اسکول کا ہم کافی پریشر ہے کمیونٹی کا کہ جی ہائی اسکول کھولیں, تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ زمین ایکوائر کر رہے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ جلدی ہم زمین ایکوائر کریں گے. تو پھر ہائی اسکول کی جب ہائی اسکول بنتا ہے تو اس میں بورڈنگ کا, آپ کی بہت اچھی سجیشن ہے سسٹر عارفہ, آپ ہمیں سچی بات ہے بہت انکریج کرتی ہیں, تو آپ کا بہت شکریہ. ان شاء اللہ یہ پوائنٹ جو ہے نا ہم بالکل اپنے ایجنڈے میں رکھیں گے.
دیکھیں ڈاکٹر, میں آپ کو اپنی زندگی کا ایکسپیرینس اس لیے بتا رہی ہوں کہ اپر کینیڈا کالج ٹورنٹو کے سینٹر میں ہے یہ, اگر میں آپ کو بتاؤں ون آف دا فائنل, ایک لوور کینیڈا ان کیوبیک میں, اپر کینیڈا یہاں پہ, اور کینیڈا بننے سے پہلے کے, اور فرام دا ڈے ون دے ڈو ہیو بورڈنگ ہاؤسز اوور دیئر بیکاز ان کا دا کوالٹی آف ایجوکیشن, پیپل وانٹ ٹو دیئر چلڈرن ٹو جوائن دیز اسکولس, اور ان بچوں کو لانگ جرنی ٹریول بھی نہیں کرنا پڑتا, بلکہ جن دنوں میں ایڈمیشن ہوتے ہیں یہاں پہ جو کرائے ہیں وہ بھی 2-3 گنا ہو جاتے ہیں جو لوگ بلڈنگز میں موو ہونا چاہتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو 9th, 10th, 11th, 12th کا اگر آپ کرتے ہیں, ایون اگر آپ چھوٹے گریڈز میں بھی دیتے ہیں, یو ہیو ٹو ہیو دا بورڈنگ ہاؤس بیکاز پیپل وانٹ دا گرومنگ آف دیئر چلڈرن. آپ کے انسٹیٹیوٹ میں دونوں نظام, یعنی اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کریکولم باقاعدہ اور انہانس میتھمیٹکس پہ توجہ دی جاتی ہے, فیوچر ہمارا ہے ہی انہانس میتھ کے اوپر.
جی بالکل سر, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بورڈنگ اسکولس کی جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ بہت اچھا ہے, کوالٹی آؤٹ پٹ ہے, और हम जो एक एंगल जो है ना जिसमें हमारा बड़ा फोकस रहा है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग और प्रैक्टिकल लाइफ की स्किल्स जो है वो बच्चों को हम सिखाते हैं। तो बोर्डिंग में रहने से मैं ये समझता हूँ कि बच्चों में ऑटोनॉमी को कैसे एक्सरसाइज करना है और सोशल इंटरेक्शंस कैसे सीखने हैं, अपनी कैरेक्टर को कैसे आपने प्रमोट करना और अच्छा बनाना है, इस चीज के मौके बड़े मयसर आ जाएंगे। तो डेफिनेटली आपकी ये सजेशन जो है वो बहुत खूबसूरत है और हम इसके इसमें डेफिनेटली इसको हम अपने एजेंडा में रखेंगे और जो ही हमारे पास रिसोर्सेज आते हैं हम इस तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपसे बातचीत होने का। डॉक्टर सफदर साहब फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में ये स्कूल वाकई है। डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया सर।
जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
वंडरफुल वंडरफुल जेंटलमैन, वंडरफुल वंडरफुल जेंटलमैन। आइए साहब, कृष्णा कपूर का आपको पता है ना? कृष्णा कपूर, समीना अस्सलाम वालेकुम, आपको पता है कृष्णा कपूर का? आपको पता है?
जी वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल
पता है। वालेकुम अस्सलाम, पता है।
अच्छा अब ये क्या हुआ था, कुछ अर्सा पहले ना ये एक बहुत अमीर आदमी, कुछ भी नहीं, मरा कैसे था, पोलो खेल रहा था, घोड़ों पे बैठ के खेली जाती है और घोड़ा उसका दौड़ रहा था और उसको मुंह खुला हुआ था, इसलिए मुंह के ऊपर टेप बांध के रखनी चाहिए। शहर की मक्खी एंटर हुई और शहर की मक्खी ने काट लिया एंड विद इन सेकेंड्स ही डाइड। ठीक है, ही डाइड इन सेकेंड्स। और ये करिश्मा के मिलियनर बिलियनर आदमी है, कोई कहते ना जब मौत का वक्त लिखा, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, दौड़ा जा रहा था, खेल रहा था, पोलो खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हुआ। और कृष्णा कपूर के साबिक शौहर भारतीय सनतकार जो संजय कपूर, उनके अल्फा, ये लंदन में इनका दिल का दौरा पड़ने से इनकी डेथ हुई थी और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सरबराह थे। कृष्णा कपूर जाहिर साबिक किशोर के तौर पर भी इनकी बड़ी थी। उनकी मौत के बाद बहुत सी खबरें आई, कुछ लोगों ने कहा कि जैसे मैं अभी कह रही हूं कि शहद की मुंह खुला हुआ था, शहद की मक्खी अंदर गई, शहद की मक्खी ने काट लिया, मगर बाद में फिर जो उनकी ऑटोप्सी हुई थी तो ऑटोप्सी में ये पता चला था कि एक बिलियनर आदमी की डेथ हो गई है, मगर ये पता चला अब एज भी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी कि घोड़े के ऊपर दौड़ते दौड़ते दिल का दौरा पड़ा, ही डाइड हो। अच्छा वो उन्होंने कुछ लफ्ज एक कहा कि कुछ निगल गया है, उन्होंने एक जो लफ्ज बोला ना कुछ निगल गया है, हालांकि अगेन आई वुड से कि ये शहद की मक्खी थी का काटा था। बहरहाल अब ऑटोप्सी में जो भी कहें, बहरहाल बाद में पता चला कि शहद की मक्खी उन्होंने निगल ली थी और फिर बाद में ये पता चला कि उनको हार्ट अटैक हो गया। अब वो बेचारे मर गए, उनकी एक दूसरी बीवी जो है ना, ये पता नहीं पहली बीवी है जिसने 15 साल पहले उनसे डाइवोर्स की थी, 15 साल उसने मुड़के नहीं देखा। अब जो वो अमीर आदमी मरा तो जब जायदाद की तकसीम का वक्त आया तो वो भी आ गई। अब देख लीजिए दुनिया में सिर्फ पैसे की वैल्यू है और किसी चीज की वैल्यू नहीं है।
उसके बच्चों की प्रॉब्लम कर रही होगी।
अच्छा आप सुन लीजिएगा, बच्चों को बिल्कुल पहले से उनके बच्चे, बिल्कुल आपने सही कहा, मगर जब ये डिवोर्स हुई थी तो उनके बच्चों का लिहाज से उनको दे दिया गया था। बहरहाल मीडिया को खबरें चाहिए होती हैं और मुझे पता है आपसे बेहतर कौन समझता है कि मीडिया बाज़ूकात खबरों को एक्सप्लॉइट करने में कितना माहिर रोल प्ले करता है। अब वो ये कहते हैं कि संजय कपूर जो थे वो उन्होंने अपनी इस बीवी को जिसको छोड़ दिया हुआ था और वो अपनी जायदाद का हिस्सा ले चुकी थी, शी वॉज डाइवोर्स, जाहिर है उनके बच्चों का हक बनता है, दिस वुमन हु मैरिड अगेन एंड लिविंग हर लाइफ शी डजंट डिजर्व एनी पेनी फ्रॉम इट। तो बहरहाल
नेक्स्ट ऑफ किन होंगे ना बच्चे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिवोर्स,
या मगर नहीं उनकी जो एसेट्स में उनका हिस्सा अभी भी है, उनको जब सेपरेशन के बाद जो एक सेपरेशन का टाइम होता है बच्चों का हिस्सा वो उसमें से दे दिया गया था। अभी आपने सुना कि आज की ब्रेकिंग न्यूज थी तकरीबन 3:05 के ऊपर, द राइटेस्ट हैं चार्ली कर्क, ये वो हैं जो कि नौजवान नस्ल इनको बहुत फॉलो करती है, वो 31 ईयर्स ऑफ एज, यूटा यूनिवर्सिटी में ही वॉज देयर और रैली कर रहे थे, हजारों की तादाद में लोग उनके सामने मौजूद थे। ना ये देखो देखने वाली चीज है, he was sitting like this, thousands of people were in front of him and Amir, ab zara mera khayal hai wo wali video dikhao jab ye shoot hua tha, look at this, wo hazaron ke majme mein baithe hue hain aur ekdam se unse ek sawal pucha jata hai ki aap transgenders ke bare mein kya kehte hain, dusra sawal pucha jata hai ki mass shooting mein kitne mass shooters the, unne kaha too many, कॉलर ने, जो बंदे ने सवाल करने वाला था, उसने कहा 10, 5, उसने कहा 5, उसने फिर 10 साल में पूछा, अभी वो 10 साल का जवाब देने लगे, लुक एट दिस स्लो मोशन में वो जवाब दे रहे हैं, तो यू कैन फील उनको गोली लगती है और ये गोली उनको गर्दन पे लगी है। इस वक्त उनकी किसी सूरत हाल हालत के बारे में नहीं बताया गया, बट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ही इज द राइटेस्ट, ही इज 31 ईयर्स ऑफ एज, यूटा यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। और आपको पता है कि अमेरिका की जो सूरत हाल है, अगर हम वाशिंगटन डीसी की भी बात करते हैं, वाशिंगटन डीसी में हर तरफ गार्ड्स इस वक्त मौजूद हैं, गार्ड्स के पहरे में हैं, और जाहिर है अमेरिका ने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं, जिसकी वजह से अब ये इख्तलाफात खुल के चलते चले आ रहे हैं। दुनिया इससे पहले किसी नज्म व जब्त के साथ थी, अब वो नज्म व जब्त से बाहर है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने साउथ कोरिया में जाके एक एड्रेस किया, उन्होंने जिस कंपनी की सर्विसेज हासिल की हैं, दे चार्ज ही उसकी जो चार्जेस हैं, कॉस्ट है 100,000 एंड अबव है, जिसमें ये अपनी जिंदगी के तजुर्बात को इस्तेमाल करते हुए लेक्चर्स देते हैं, जिसमें उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि 80 साल तक जब दुनिया कानून के तहत, दस्तावेज के तहत चलती थी, तो थिंग्स वर बेटर स्टिल एज कम्पेयर टू नाउ। अगर अब जब कोई दस्तावेज की अहमियत नहीं रही, तो दुनिया इज सफरिंग, वी हैव टू सिट डाउन टूगेदर। समीना
अपा, आई थिंक दस्तावेज तब भी थे, 20 साल पहले भी थे, 40 साल पहले भी थे, 80 साल पहले भी थे,
एंड दैट इज एडमायरेबल।
और उस वक्त वो दस्तावेज थे इन कॉन्टेक्स्ट टू द इश्यूज दैट सोसाइटी वॉज फेसिंग एट दैट टाइम। और उस वक्त भी अगर आप किसी को पूछते तो वो उनमें भी कोई ना कोई गैप
अगेंस्ट
जो है, अगेंस्ट इज अ पर्सपेक्टिव, बट उसमें कोई ना कोई गैप को आइडेंटिफाई कर सकते थे। ठीक है, आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, आप पिछले 5-10 सालों को भी देखें, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, नेशनलिज्म इवॉल्व कर रही है, दस्तावेज अभी भी हैं, परहैप्स फार मोर डिटेल्ड एंड फार मोर स्ट्रिंजेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द पर्पस ऑफ दोज रेगुलेशंस एंड लॉज। आज हम कहते हैं कि वो इनफ नहीं है या उनमें गैप्स हैं, आज से 25 साल आगे जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, वो जब इस तरह आपकी और मेरी तरह बैठ के किसी मीडिया पे बात कर रहे होंगे, बोल तो पता नहीं कोई बात कर भी रहा होगा कि सब कुछ सिर्फ एक टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिकल वे में होगा, तो वो हमारे बारे में बोलेंगे। तो इट्स वेरी, एक बड़ा अच्छा इंग्लिश का एक मुहावरा है कि हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20। पीछे बंदा मुड़ के देखे तो बंदा सोचता है कि जी ये भी सही था, वो भी सही था। यकीनन उस जमाने में अगर आप वही लोगों से पूछते तो वो गैप्स और चैलेंजेस तब भी थे, वो गैप्स एंड चैलेंजेस आज भी हैं। क्योंकि हम आज के दौर में रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं जिंदगी के अंदर, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है वो आज कोई उतना कम या ज्यादा नहीं है जो कि 10 साल पहले, 20 साल पहले उस टाइम के हवाले से होता था। सो इसलिए कहते हैं टाइम इज रिलेटिव एंड इट इज अ लॉट अबाउट पर्सपेक्टिव। जहां तक एक मॉनेटरी गेन का सवाल है, पॉलिटिशियंस हो, एकेडेमिया हो, अक्सर लोग किसी भी एनवायरमेंट में जहां काम करते हैं, वंस दे रिटायर दे टेंड टू बिकम कंसल्टेंट्स और दे गो इनटू प्राइवेट कंसल्टिंग वर्क, बिकॉज वो अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस लेवरेज करते हैं। एंड आई पर्सनली थिंक उसमें कोई हार्म नहीं है, दैट बिकम्स देयर सोर्स ऑफ इनकम।
डजंट मैटर, आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस, बट आई एम जस्ट, आपने एक चीज बड़ी खूबसूरत हाईलाइट की कि हर मुआशरे में, हर जमाने में इश्यूज रहे, और जब लेटर ऑन हम बात करते हैं तो हम उसको ढाल सकते हैं, मगर तब विजन कुछ लोगों का होता है, वो सोचते हैं। एक पोएम है जिसको इंडिया में भी बैन किया गया, पाकिस्तान में भी, मेरा ख्याल है लोग वो कहते हैं हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, मैं भी, फैज अहमद फैज का कलाम है,
जबरदस्त।
नो वन, इट वाज रिटन 1979, इट वाज 1979 जब ये पोएम लिखी गई थी, हम देखेंगे, फर्स्ट रिटन बाय द पोस्ट पोइट जनाब फैज अहमद 1979, सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस आपको इसमें पाया जाता है।
1979, 79, 89, 99, 2009, 2019. This means 46 years ago. 46, almost half a century ago bhi same situation thi. Hum dekhenge, lazim hai ki hum bhi dekhenge. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے, وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح عظم پہ لکھا ہے, ہم دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے, جب ظلم و ستم کے کوہ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے, یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے روئی کی, وہ کہتے ہیں جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی, جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے, ہم اہل صفا مردود حرم مستد پہ بٹھائے جائیں گے, جب تاج اچھالے جائیں گے جب عرض خدا کے کعبے سے, بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے اور حاضر بھی, جو ناظر بھی ہے منظر بھی, اٹھے گا انا الحق کا نعرہ. تو یہ 1979 almost 46 years which is almost a half a century ago بھی اگر صورتحال یہ تھی تو آج اگر آپ دیکھ لیں تو it is not only in Pakistan but it is beyond the world.
It's beyond the world if you look at East European countries, if you look into the history of the French Revolution.
Yeah.
یہ ایشوز تب بھی تھے.
اگری
اور وہی دا پرائمری ایشو اینڈز اپ بینگ ایدر پاور اور کنٹرول.
کنٹرول
اس میں ایک مانیٹری اسپیکٹ یقیناً آ جاتا ہے بٹ اٹس پاور اینڈ کنٹرول. فرینچ ریولیوشن دیکھیے, اس سے آپ پیچھے جائیے جو ہمارا مغلئی دور تھا اس کو دیکھیے, جو ایک ریزسٹنس ہوئی تھی. تو ایٹ ایوری پوائنٹ ان ٹائم ان ہسٹری, مجھے ہسٹری کے بارے میں الف کا نام کو کو نہیں آتا بٹ ہسٹری ڈکٹیٹس دیٹ پاور از آلویز.
زمینہ میں یہی پہ آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں, جب سپٹمبر 2001 میں واقعہ ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ بش واز دیئر ان دی وائٹ ہاؤس, انہوں نے کہا تھا فرسٹ ورلڈ آرڈر. ڈو یو ریمبر فرسٹ ورلڈ آرڈر کا لفظ؟ Why do they, what is meant by the First World Order? What is First World Order? It's a very important information.
Hmm.
What is First World Order? First World Order, پوری کی پوری دنیا نقشے پہ موجود تھی, امریکہ بھی نقشے پہ موجود تھا. امریکہ کو کولمبس نے بہت بعد میں دریافت کیا, حالانکہ یہ جگہ یہاں پہ موجود تھی. And this is called as the First World. Any order which is given by America is considered as the First World Order.
The dominance to rahi hai na unki,
dominance. Unki the dominance started after the Second World War. Huh? After the Second World War. Where the and let me tell you, Americans, basically American people are very naive. Very fine, very naive people, Americans. Magar, آپ سوچئے گا کہ Second World War میں امریکہ تو دوسری جنگ عظیم میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتا تھا. اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے یہاں کے, وہ بلکہ انگلینڈ کا, انہوں نے چکر بھی لگایا تو امریکہ مطلب سائڈ سائڈ سے سائڈ لائن پہ جانا. بٹ دے ور انڈلجڈ ان ٹو, دے ور فورسڈ ٹو گیٹ ان ٹو پرل ہاربر کا واقعہ تھا. ان ممالک میں 25 سال تک ڈاکیومینٹس انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں, 25 سال کے بعد حکومتیں چاہیں تو وہ ڈاکیومینٹس آؤٹ ہوتے ہیں, ورنہ پھر اگلے 25 سال کے لیے بھی ان کو بند کر دیا جاتا ہے. تو امریکہ کو تو انوالو کیا گیا تھا, ایک دایاں دکھا کے بایاں کرایا تھا.
کیوں کہتے ہیں دیکھیں نا اپا, آئی وڈ ناٹ سے دیٹ اٹ واز پیور نائیوٹی آن دیئر پارٹ, دیر از اے لاٹ آف اسٹریٹجی بہائنڈ دیٹ. مگر آپ یہ دیکھیے کہ دیئر پارٹس آف دا ورلڈ وچ اف دے آر, آج کل جب لوگ کہتے ہیں کہ جیو پولیٹیکل حوالے سے اف سم آف دیز کنٹریز ڈو فارم این الائنس, دیٹ از دا بگیسٹ تھریٹ.
یس,
اینڈ دا تھریٹ از ٹو دا ایگزٹنگ پاورز. اگر یہ اور بہت ساری ملک ہیں, ساؤتھ میں ہیں, نارتھ میں ہیں, فرق علاقوں میں ہیں, فرق جس طرح ہمارے کیا کہتے ہیں جو اٹلانٹک جو ریجنز ہیں, वहां पे अगर ये अलायंसेस फॉर्म करते हैं दे हैव द कैपेसिटी टू स्टैंड अप अगेंस्ट
एग्री
अ सुपर पावर.
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और इंग्लैंड साथ साथ थे और जर्मनी इंग्लैंड साथ थे. अमेरिका जो था उसने जो हमारे यहां के प्रेसिडेंट थे उन्होंने विजिट भी किया था मगर अमेरिका इन्वॉल्व. जापान उस वक्त रशिया के साथ था. फिर उसके बाद पर्ल हार्बर का वाक्य होता है जिसमें अमेरिका को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना जाता है. अमेरिका फिर उसमें इन्वॉल्व होता है और उसके बाद जापान में एक एटम बॉम्ब दूसरा एटम बॉम्ब. एंड दिस इज आज जब पोलैंड का जब वाक्य करें तो आज पोलैंड ने चार ड्रोन्स को गिराया रशियन ड्रोन्स को. मगर ये रशिया से नहीं आए ये बेलारूस की तरफ से आए थे और सारी रात क्योंकि अटैक का सिलसिला जारी रहा. मगर उन्होंने कहा है कि वी हैव अचीव्ड इट फर्स्ट टाइम वेरी गुड. मगर पोलैंड ये कहता है कि तीसरी दुनिया जंगे अजीम का कोई खतरा नहीं. वेयर एज अगर मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व होता है तो वेयर द वर्ल्ड स्टैंड आई डोंट नो व्हाट इज आवर फ्यूचर टुमारो बट इंशाल्लाह थिंग्स विल सेटल. एक गीत की तरफ लेके जाना चाहती हूँ सुमीना. एक गाना बाज़ूकात आजकल कलरफुल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं ठीक है. एक गाना है वो एक गाना है बाजरे दस